नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफा की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जल मरुमध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमले से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस के आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गैंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुलिस को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डीप फेक आदि से पटने के लिए तैयार रहने को कहा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्र की असाधारण सेवा, अतुट अनुशासन और समर्पण के लिए देश को पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग और एसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पूर्ण मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियों पुनर्निर्धारित की गई है। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धरमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कीडी के शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगी को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल मरुमध्य के पास एक दूसरे पर हमला किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल मरुमध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें जहरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमले में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए थे। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभिषेक देव रॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों से बंगाल को मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए पता लगाओ हटाओ निवारित करो नीति लागू की। इस योजना के तहत घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा रहा है और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हाओ यांची ने किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमेनेज सम्मेलन का दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस को से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राज चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपने ही पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक और महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासत निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुष्ट निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुष्ट निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कार और यात्री तथा माल कार से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघाड़ा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पुल ए में रखा गया है। पुल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें शामिल है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।